सार्वार्धमागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्वर्थफलस्तवक प्रवालकुसुमोपशोभिततरुपरिणामा आदर्शतलप्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनुज्ञा विहरणमन्वेत्यनिलः परमानन्दश्च भवति सर्वजनस्य मारुतोऽपि सुरविगन्धव्यामिश्रायोजनान्तरं भूभागं उपशमितधूलिकण्टक तृणकीटकशर्करुफलं प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनितकुमारा विद्युन्मालाविलासहासविभूषाः प्रकिरन्ति सुरविगन्धं गन्धोदकवृष्टिमाज्ञया त्रिदशपतेः। तो सार्वार्ध मागधीय भाषा इसमें मागध देवों का योगदान रहता है। फिर मैत्री च सर्व जनता विषय सब प्राणियों में जो मैत्री हो जाती है वो प्रीतिंकर देवों के निमित्त से होती है। और फिर सब ऋतुओं के फल पुष्प कोमल एक साथ होते हैं, ये भी देवातिशय है। और ऐसी धरती पूरी सुसज्जित हो जाती है और ऐसा लगता है कि धरती रत्नों से बनी हुई है। सकल जन नयन मन प्रीति करी, सब लोगों के नयनों को और मन को प्रीति उत्पन्न करने वाली होती है। विहरण मनवेत्य निल, भगवान का जो विहार होता है उसमें अनिल अनु एति अन्वेति, जो वायु इसमें कोई सार नहीं है, वो आप यहाँ से उड़ाओगे वहाँ काटते, मच्छरों का कोई उपचार नहीं है आप लोगों के यहाँ, बाकी तो ठीक है। तो पीछे की ओर से वायु बहती है, भगवान जाते हैं सामने से वायु नहीं आती, वायु पीछे की ओर से प्रवाहित होती है। और परमानंदश्च भवति सर्वजनस्य, एक अतिशय ऐसा भी है कि सब लोगों को बड़ा संतोष और बड़ा आनंद होता है, ये भी देवातिशय है। मरुतोपि सुरभि गंधव व्यामिश्रा, और जो वायु होती है उस समय वो सुगंधित वायु होती है। और योजनांतरम भूभागम व्युपशमित धूलि कंटक तृण कीटक शर्कर उपलम प्रकुर्वन्ति, देवलोग एक योजन का जो भूमि खंड है जहाँ जहाँ भगवान चलेंगे उनको घेर करके पूरा जो एक योजन का क्षेत्र है उतने क्षेत्र में धूल नहीं उड़ सकती, वहाँ कांटे नहीं मिलेंगे, वहाँ घास फूस कीड़े मकोड़े कंकड़ पत्थर नहीं रहेंगे, पूरा भूमि भाग एक योजन प्रमाण भूमि भाग स्वच्छ हो जाएगा। तदनु स्तनित कुमारा, फिर स्तनित कुमार, इस स्तनित कुमार शब्द आपने तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय में सुना होगा, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग निवात स्तनितो दरिदुई कुमारा, वनवासियों के 10 वेदों में से एक स्तनित कुमार नाम का वेद है। स्तनितम मेघ गर्जितम, कोश में देखो, अमर कोश में लिखा है। स्तनित शब्द का अर्थ होता है मेघ गर्जना। इन देवों को मेघ कुमार देव भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? विद्युन्माला विलास हास विभूषा, इनकी वेशभूषा में बिजलियां चमकती है। ये इनका एक अलग प्रकार का विलास होता है, यानी हाव भाव विभ्रम विलास। फिर हास विभूषा, और इनके मुखड़ों पर बड़ी मुस्कान होती है। इन सब से विभूषित होते हैं ये। तो ये जो मेघ कुमार देव हैं, ये भगवान के देवकृत चतुर्दश अतिशयों में सुरभि गंधिम गंधोदक वृष्टिम त्रिदशपते आज्ञया प्रकिरन्ति, इंद्र की आज्ञा से ये लोग सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, मेघ कुमार देव। और वो वर्षा ऐसी नहीं होती कि सब भीग करके परेशान हो जाए, उनको छतरी लगानी पड़े, ऐसा नहीं। अब आप छतरी की बात सुनकर के सोचोगे कि अरे छतरी उस समय थोड़ी होती थी, छतरी तो अभी अभी का आविष्कार, ऐसा नहीं है। क्षुल्लक अवस्था में चतुर्थ काल में जो नारद जी थे वो क्षुल्लक महाराज थे, तो वो छतरी रखते थे। जब आवश्यकता पड़ती है तब उसका प्रयोग वर्जित नहीं है। और अगर साधु छतरी का प्रयोग स्वीकार करते हैं, अस्वस्थ अवस्था में करते हैं तो प्रायश्चित नहीं है, स्वस्थ अवस्था में करते हैं तो प्रायश्चित है। चाहे धूप में या और किसी परिस्थिति में अगर उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल है तो फिर प्रायश्चित नहीं है, और स्वास्थ्य सही सलामत है तो फिर प्रायश्चित है। और क्या होता है? तो बोले कि वर पद्म राग केसर मतुल सुख स्पर्श हेम मय दल निचय पादन्यासे पद्मम सप्तपुर पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति। स्वर्ण कमलों की रचना देवलोक करते हैं, जब भगवान विहार करते हैं तो भगवान तो गगन गमन कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो रिक्त भाग है वहाँ पर स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं देवलोक। लेकिन उसके बीच वाला भाग जो होता है वर पद्मराग केसर, स्वर्ण के कमल के अंदर एक कर्णिका होती है पीली वाली बीच में, तो वो जो पीला वाला भाग है कमल का वो पद्मराग मणियों से निर्मित होता है, और कमल जो होते हैं स्वर्ण के होते हैं। और अतुल सुख स्पर्श, कोई सोचेगा कि कमल का जो निर्माण है वो स्वर्ण से हुआ है, तो छूने में तो मेटेलिक लगता होगा, धातु जैसा कठोर लगता होगा, तो फिर उसमें कह रहे हैं कि नहीं, अतुल सुख स्पर्श, अतुलनीय सुखकारी उसका स्पर्श होता है। और हेममय दल निचय, उसकी पंखुड़ियों का समूह जो होता है वो स्वर्णमय होता है। पादन न्यासे पद्मम, जहाँ वो पाद न्यास करते, न्यास का अर्थ होता है रखना, तो जहाँ पर वो पैर रखा, ऐसे दो वर्णन मिलते हैं तीर्थंकरों के विहार के विषय में। एक वर्णन ऐसा होता है कि जिसमें उनके पैर ऐसे चलायमान हो रहे हैं, ये बात दृष्टिगोचर नहीं होती, दोनों पैर विचित्र रीति से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा जो वर्णन है उसमें ये बता रहा है कि जहाँ वो पैर रखते हैं पादन्यास, जहाँ पर पैर रखते हैं वहाँ पद्मम एक कमल रहता है। और सप्तपुर पृष्ठतश्च सप्त, सात आगे रहते हैं सात पीछे भी रहते हैं, और ऐसे पूरी कुल मिलाकर 32 पंक्तियां होती हैं। बीच वाले कमल को घेर करके, जहां बीच वाले कमल पर तो भगवान श्री के चरण हैं, तो उसको घेर करके ऐसे 32 पंक्तियां हैं। अब भगवान को जहां भी जिस पंक्ति पर जाना हो वो जा सकते हैं। तो 32 पंक्तियां हैं वहां पर और प्रत्येक पंक्ति में 7 कमल हैं, तो कुल कमल कितने होंगे? तो 7 को 32 से गुणा करो, 224। और जिस कमल पर भगवान के चरण हैं उसको और जोड़ दो, तो कुल मिलाकर पूरे 225 कमल होते हैं। और इतना सुंदर लगता है वो दृश्य, जैसे ही भगवान एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पीछे वाले कमल पूरे विलुप्त हो जाते हैं और एकदम सामने उनकी संरचना हो जाती है। एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, वो सर्कल कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आगे 6 हो जाना चाहिए ना और पीछे 8 हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी प्रसंग आ नहीं सकता, क्योंकि देवों की व्यवस्था एकदम, वो सामने हमेशा 7 रहेंगे और पीछे भी हमेशा 7 रहेंगे, ऐसे गोल आकृति बनी रहती है और भगवान आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर अगर कहीं मुड़ना होता है तो उस दिशा में वो पूरी कमल रचना चलती है। अभी जैसे आजकल जो डिजिटल लाइट्स आते हैं, पहले तो पूरा मैकेनिकल चलता था, तो ऊपर छत पर वो रखना पड़ता था पूरा, और फिर वहाँ से सेटिंग होती थी, तो पूरे लाइट ऐसे चालू होते थे, बंद होते थे। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे वो बंद हो गया लाइट तो फिर ऐसा लगता है कि कोई लाइट से बनने वाली आकृति आगे चल रही है, और पीछे यद्यपि सारे बल्ब्स यथावत है तो ऐसा लगता था कि पीछे के सब गायब हो गए और वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा ही गायब ही हो जाता है पीछे वाला, और वो पूरे आगे हो जाता है। तो कैसे होता होगा ये, हो सकता है आज के कंप्यूटराइज्ड युग में ये बात दिखाई जा सकती हो, और अच्छा रोचक हो जाएगा अगर इतना सा अगर दिखा दिया जाए कंप्यूटर में उसको सेट करके, वो एक कदम आगे बढ़ा रहा है, वो जितना नेचुरल लगे उतना अच्छा लगेगा। नहीं तो अपन ऐसे डेमो के लिए तो ऐसे दिखा सकते हैं कि, पर डेमो को देखने में वो बुद्धि में तो चला जाएगा, पर हृदय में जाने के लिए उसको एकदम ही प्राकृतिक दिखाना पड़ेगा। तो वैसा हो सकता है। पंचविंशत्यधिक शतद्वय पद्म प्रस्तारो ज्ञातव्य। 25 अधिक 200 कमलों का वो विस्तार जानना, तथा ही अष्टसु दिक्षु 8 दिशाओं में, तदंतरेषु उनके अंतरालों में, चाष्टसु 8 अंतरालों में, सप्त सप्त पद्मानि इति द्वादशोत्तरमेकं शतम्, 112 हो गया, तथा तदंतरेषु षोडशसु सप्त सप्तेति। फिर वो जितनी पंक्तियां बनी हैं, 16 पंक्तियां बनाई थी, और उनके अंतरालों में और पंक्तियां बन जाएगी, तो 16 और 16 32 पंक्तियां हो जाएंगी, और इस तरह सब मिला करके 225 कमल होंगे। एक कमल भगवान के चरण के नीचे होगा तो 225 हो जाएगी, 224 और एक 225। फिर एक और विकल्प बताया उसमें कि कभी इस संरचना को परिवर्तित करना हो तो फिर वो जैसे ये चौकी पर जो वस्त्र है, इसमें जो पंक्तियां बनी हुई हैं, ऐसी 15 पंक्तियां बना देते हैं देवलोग। और उन 15 पंक्तियों में, एक मिनट, पंचदश पद्म पंक्ति हैं उभय पार्श्वतः, ऐसे सब मिला करके 15 पंक्तियां हो जाती है। और उसमें भी 7 आगे 7 पीछे, 7 आगे 7 पीछे। कितने बनेंगे फिर? टू ट्वेंटी फाइव बाय फिफ्टीन, फिफ्टीन ही आएगा। टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय 15, फलभार नम्रशालि ब्रीयादि समस्त सस्य धृतरोमांचा परिहृषिते च भूमिस् त्रिभुवननाथस्य वैभवं पश्यन्ति। सारे खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं जब भगवान का विहार होता है, और उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती भगवान को देखकर रोमांचित हो चुकी हो, यानी जैसे धरती के रोंगटे खड़े हो गए हो भगवान की भक्ति से। भगवान, ये अलंकारिक वर्णन है, भगवान को जैसे धरती ने देखा तो सारी धरती पर फसलें व्याप्त हो जाती है, लहला उठती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती के रोंगटे खड़े हो गए हों। शरदोदय विमल सलिलम सर इव गगनम विराजते विगतमलम जहति च दिशस्ति मेरी काम विगत रज प्रवृत जिम्मता भावं सद्यः। जैसे शरद काल में, शरद ऋतु में सारा जल, सारी नदियां स्वच्छ हो जाती है। कहते हैं कि अगस्त तारा जब निकलता है तो फिर जल निर्मल हो जाता है। तो जैसे वो जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही जहां भगवान होते हैं वहां पर गगन भी स्वच्छ होता है। और दिशाओं में जो तिमिरिका होती है, जैसे शाम को और सवेरे आप बीच वाला आकाश देखोगे तो आपको नीला दिखेगा, लेकिन किनारों वाला आकाश देखोगे, हॉराइजन वाला, क्षितिज वाला जो आकाश आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अंधेरा दिखेगा। तो वो जब भगवान विहार करते हैं तब वो अंधेरा नहीं रहता, छट जाता है। ये भी एक अतिशय है। एते ते ते त्वरितम् ज्योतिर्वेन्तर्दिवौकसाम् अमृतभुजः कुलशुभदाज्ञापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्ततो व्यावानम्। ज्योतिष्कदेव, व्यंतरदेव और अन्य अमृतभुज, अन्य भी अमृत का भोजन करने वाले जो भी देव हैं, वे कुलशुभदाज्ञया, इंद्र की आज्ञा के कारण, समंत तो व्यावान कुर्वंती, चारों दिशाओं में जो भी भगवान के भक्त आकर के वहाँ समव शरण में या फिर भगवान के दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं, उन सब का आह्वान करते हैं, आओ आओ आओ, यही है भगवान, कहाँ तुम सही स्थान पर पहुँचे हो, यहाँ से सीधे निकलो, इधर है भगवान। तो वो सब सबका स्वागत करते हैं, देवलोक सबका स्वागत करते हैं। फिर और क्या होता है, स्फुरदर सहस्र रुचिरम विमल महारत्न किरण निकर परीतम प्रहसित सहस्र किरण द्युति मंडलम अग्रगामी धर्म सुचक्रम। भगवान विहार करते हैं तो उनके अग्रगामी, उनके आगे गमन करने वाला एक चक्र होता है, जैसे चक्रवर्ती का चक्र होता है ना, वैसे ही तीर्थंकर का भी एक चक्र होता है। और स्फुरधर सहस्र रुचिरम, उसमें 1,000 आरे होते हैं उस चक्र में। और विमल महारत्न किरण निकर परीतम, शुद्ध महारत्न, कोई सामान्य रत्न होते हैं, कोई उपरत्न होते हैं और कोई महारत्न होते हैं। तो महारत्न में हीरा, पन्ना, माणिक्य, ऐसे बड़े बड़े रत्न आते हैं जो सबसे मूल्यवान होते हैं। तो वो रत्न उसमें जड़ित होते हैं उस चक्र में, तो उनकी किरणों से वह व्याप्त होता है। और कैसा होता है वो चक्र, प्रहसित सहस्र किरण द्युतिम, वो सूर्य की कांति की हंसी उड़ाता है, यानी उसका तेज इतना अधिक होता है कि सूर्य उसके तेज के समक्ष फीका पड़ जाए। ऐसा चक्र भगवान के सामने चलता है और उस चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। और जब समवसरण लगता है तो फिर यक्षदेव उस धर्म चक्र को पकड़कर ऐसे सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं। सर्वांड यक्ष धर्म चक्र को सिर के ऊपर धारण करते हैं। इत्यष्टमङ्गलञ्च स्वादर्शप्रभृतिभक्तिरागपरीतैः उपकल्प्यन्ते त्रिदशैः रेतेऽपि निरुपमातिविशेषाः। और इसी प्रकार ये अंतिम अतिशय है भगवान के, देवकृत 14 अतिशयों में ये 14वां अंतिम अतिशय है कि वहां पर त्रिदशैः उपकल्प्यन्ते, भगवान के निकट देव द्वारा, देवों द्वारा अष्ट मंगलों की संरचना की जाती है। और उन अष्ट मंगलों को समवसरण में देवियां पकड़ करके रखती हैं। तो वो अष्टमंगल कैसे, कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, तो निरुपम होते हैं वो, उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। तो वो अष्टमंगल, उनमें सबसे पहला है छत्र। ये सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि वर्तमान युग में अष्ट मंगलों में एक मंगल बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। तो इसको आप ध्यान से सुनना, शास्त्र क्या कहते हैं। और ये बात तिलोय पंडित्य में भी आती है, ये बात अन्य स्थानों पर भी आती है। तो अभी आप ये सुनिए, एक पहला तो है छत्र है अष्टमंगल में। कई मंदिरों में ऐसे अष्टमंगल बने रहते हैं, तो उसमें सबसे पहला मंगल है छत्र। दूसरा है ध्वज, एक मंदिर के शिखर वाला ध्वज अलग होता है और ये अष्टमंगल वाला ध्वज अलग होता है। फिर कलश है, कलश भी एक मंगल है, उस पर पल्लव भी होंगे, उसके ऊपर श्रीफल, श्रीफल का अर्थ आप जानते हैं, नारियल नहीं होता श्रीफल, बल्कि नारियलों में सैकड़ों नारियलों को निकालने के बाद कोई एकाध नारियल ऐसा निकलता है जिसमें एक आंख होती है, तो एकाक्षी नारियल को श्रीफल कहते हैं। तो अष्टमंगल में कलश के ऊपर वो श्रीफल होता है, एकाक्षी नारियल। और अष्टमंगल में और क्या आएगा, चामर, जिसको अपन चंवर बोलते हैं, संस्कृत में उसको चमर भी बोलते हैं और चामर भी बोलते हैं, दोनों रूप बनते हैं। उसका कारण है कि एक चमरी मृग होता है, बंगाल के सुंदर वन में वो चमरी मृग एक प्रकार का हिरण है, या एक प्रकार थोड़ी ऊंची आकृति उसकी, जैसे नील गाय होती है ना, रोज वगैरह, तो वो चमरी मृग की जो पूंछ होती है उसके बालों से चमर बनते हैं, जो ओरिजिनल चमर आते हैं, असली चमर, वो चमरी मृग के पूंछ के बालों से बनते हैं। इसलिए चमर को चमरी मृग की बालों से बनने के कारण चमर बोलते हैं उसको चामर बोलते हैं। एकदम गाय जैसी है ये चित्र दिन। आज ओम की ध्वनि चल रही है एम्पलीफायर से, चमर। और अब ये चार हो गए, छत्र, ध्वज, कलश, चमर। पांचवा जो है ये वर्तमान में बदल दिया गया है। आपने अष्टमंगल में स्वस्तिक देखा ना, नहीं देखा? कई मंदिरों में अष्टमंगल में स्वस्तिक लगा रहता है, तो वो स्वस्तिक अष्टमंगल में आता ही नहीं है, पर न जाने क्यों लोगों ने स्वस्तिक लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, काल का प्रभाव मान करके अपन अपने मन में कषाय न लाते हुए केवल इस जानकारी को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आगम में है। अमरकंटक में निर्यापक योग सागर मुनि महाराज से हमारी चर्चा हुई थी अष्टमंगल को लेकर के, तो हमने त्रिलोक सार ग्रंथ की वो गाथा उनके सामने रखी थी कि महाराज जी ये लिखा है गाथा में, मूल गाथा में, और जहां जहां अष्टमंगल का वर्णन आया है वहां पर कहीं पीठ शब्द भी आता है, कहीं और कोई शब्द आता है, जैसे यहां पर क्या शब्द है, सुप्रतीक। सुप्रतीक का अर्थ स्वस्तिक नहीं है, स्वस्तिक बिल्कुल भिन्न शब्द है, लेकिन सुप्रतीक को कुछ लोगों ने स्वस्तिक बना दिया और फिर वो चीज चल पड़ी। और किसी चीज को चलाना हो तो जैसे मीडिया पर कोई वीडियो डाल दो तो फिर चलनी होती है तो चल जाती है, भले वो कितनी भी प्रामाणिक अप्रामाणिक हो, तो वो चीज चल गई। और अब बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े धर्म स्थानों पर, बड़े बड़े क्षेत्रों पर अष्टमंगल का मूल स्वरूप विकृत करके लोगों ने उसमें स्वस्तिक का समावेश कर दिया, जबकि स्वस्तिक अष्टमंगलों में होता ही नहीं है। तो ये सुप्रतीक क्या वस्तु है? सुप्रतीक वह आकृति है जिसको क्षेपिणी भी कहते हैं, जिसको हिंदी भाषा में ठोना कहते हैं, ठोना। जब अपन भगवान की अर्चना करते हैं या फिर चौके में गुरुओं की अर्चना करते हैं, तब एक आसन होता है, एक पीठ होता है, वो थोड़ा ऊंचा होता है। वह मूल विधि ये है, आप थाली में कर लो या आपका शॉर्टकट हो सकता है, आप सब सुविधा भोगी बन चुके हैं। कोई भी धर्म ठीक से आगम उक्त नहीं करना चाहता, अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं लोग। तो वो थोड़ा ऊंचा रहता है स्थान, फोटो हो तो फिर दिखा सकते हैं, इसको स्थापना भी बोलते हैं। वो अष्टमंगल में एक है, ये तो दीपक जैसा आकार हो रहा है, हाँ पर ऊपर से फ्लैट है ना, हाँ ऊपर से फ्लैट है तो फिर ईट होना है। हाँ ये वाला है, इसको एनलार्ज करो, ये एंगल थोड़ा नीचे करो ऐसे, ये अष्टमंगल में आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अभी कुछ विद्वानों ने इस पर भी एक अभियान छेड़ा कि ये गलत है, होना ही नहीं चाहिए, बोले जब मूर्ति सामने है तो फिर भगवान को वहां पर ठोने में क्यों स्थापित कर रहे हो। तो एक नियम है कि जो भी अपने आराध्य होते हैं उनकी आराधना करते समय अपन उनको सम्मुख आमंत्रित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं, और फिर अपन उनके सन्निकट होकर के उनकी भक्ति करते हैं। ये नियम है, इसको पुरस्कार कहते हैं। पुरस्करण का अर्थ होता है पुरह, यानी अपने सामने, अपने निकट, अपने सम्मुख करना। अभी भगवान तो वहाँ वेदिका पर विराजमान है, लेकिन आपको अगर यहाँ से भक्ति करना है, आप एकदम सारे लोग वहाँ पर घेर करके थोड़ी करोगे पूजा, आप यहाँ से पूजा करना चाहते हैं तो फिर उनको आप निवेदन करेंगे, ओम ह्रीम तीर्थंकर महावीर स्वामिन अत्र अवतर अवतर, यहाँ पर अवतरित हुई है, संभव षट, वो संभव षट एक बीज पद है, मतलब उसमें अपन एक अव्यय पद है, जब आमंत्रित करते हैं तब संवोषट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो आमंत्रण वाची है। तो इसमें कोष्टक में आह्वानम लिखा रहता है, दो शब्द है आह्वानम और दूसरा है आवाहनम, आह्वाननम अशुद्ध शब्द, आप तीनों लिख लीजिए, आह्वानम आ ह के अंदर व वा न और न पर अनुस्वार कर दो तो आह्वानम होता है, आह्वानन अशुद्ध पाठ है, और दूसरा पाठ है आवाहन आ वा ह न, एकदम सरल है, तो आह्वानन बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको सुधार सकते, जिनको जानकारी नहीं थी वो सुधार सकते हो, आप चाहें तो व्याकरण में देख लेना, कोश में देख लेना प्रामाणिकता के लिए, तो आवाहन अथवा आह्वान न दो बार नहीं है आह्वान में, और आवाहन में भी न एक ही बार है, तो आह्वानन कोई शब्द नहीं होता संस्कृत में, इसलिए उसको सुधारना। तो अपन क्या करते हैं, आह्वान करते हैं, आमंत्रण करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और यही विधि पड़गाहन के समय होती है, हे स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र अत्र अत्र, और उसके बाद फिर उनको ठहराते हैं, तिष्ठ तिष्ठ। तो वैसे ही भगवान को वहाँ पर आपने आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद में तिष्ठ 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह, ये ठह ठह भी स्थापना सूचक बीजाक्षर है, ठह। तो आप रोक रहे हैं भगवान को, बस यहां आइए, यहां ठहर जाइए, तिष्ठ तिष्ठ विराजमान होइए विराजमान होइए। और फिर एक तीसरी पंक्ति और बोलते हैं, ओम ह्रीम महावीर स्वामी नत्रावतरावतर संभव षट आह्वानम, फिर दूसरी पंक्ति में ओम रीम श्री महावीर स्वामिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम स्थापनम कोष्ठक में बोल ना बोलो तो भी चलेगा, आह्वानम ना बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि संवर्षट बोल दिया तो उसका अर्थ ही है आह्वान, पर कोष्ठक में अपने को समझाने के लिए उसमें छपा रहता कि अभी इस ये पंक्ति आह्वान की पंक्ति है, ये पंक्ति स्थापना की पंक्ति है। फिर तीसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिन अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट। सन्निधिकरण, ये सन्निधिकरण है, मतलब आप यहाँ पर मुझे अपना सानिध्य प्रदान करिए। वहां वेदी में आप थोड़े दूर पड़ रहे हैं मेरे से और मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, तो मुझे आप अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। अब वसुनंदी श्रावकाचार्य में एक गाथा आई कि इस हुंडाव सर्पणी काल में अतदाकार स्थापना नहीं करनी चाहिए। अतदाकार का अर्थ होता है कि ये अपन ने जो स्थापना की भगवान की उसमें ठोने में वो चावल पुष्प आदि से की स्थापना, तो वो अतदाकार है क्योंकि उसका आकार भगवान जैसा नहीं है, और तदाकार स्थापना मूर्ति में है क्योंकि मूर्ति का आकार भगवान से मिलता जुलता है। तो हुंडाव सर्पणी में अतदाकार स्थापना नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा। तो इस गाथा को लेकर, वसुनंदी श्रावकाचार्य की इस गाथा को लेकर कुछ विद्वान अपने शिविरों में कहते हैं कि देखो वसुनंदी श्रावकाचार्य में लिखा है कि ये स्थापना नहीं करनी चाहिए। देखो अपने मतलब की बात बताने के लिए वो गाथा दे रहे हैं, वसुनंदी श्रावकाचार्य में और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मान्य नहीं है उनको। पूज्य निर्यापक मुनिराज अभय सागर महाराज श्री ने कहा था इस प्रवृत्ति को देख कर कि देखो प्रमाण उस ग्रंथ का दो जो पूरा मान्य हो, उसकी एक बात मान्य है तो फिर प्रमाण दे रहे हो, दूसरी बात अमान्य है तो फिर उसको छुपा रहे हो, उस गाथा की बात कभी करोगे नहीं। तो वसुनंदी श्रावकाचार्य में जो पूजा विधि दी है वो तुम्हें मान्य नहीं है तो वो कभी बताओगे नहीं पब्लिक को, और ये बताओगे कि ठोने में स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो अब एक ये वीर वसुनंदी आचार्य जो थे सिद्धांत चक्रवर्ती थे, सिद्धांत चक्रवर्ती वो होते हैं जो षटखंड आगम के पाठी होते हैं, पूरा षटखंड आगम जिनको हृदयंगम हो जाता है वो सिद्धांत चक्रवर्ती होते हैं। तो आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी आपने नाम सुना हो, जिन्होंने विसट कंदोट दलाणु यारम, विसट कंदोट दलाणु यारम सुलोयण चंद समान तुंडन घूणा जियं चंपय पुप सोहम तम गोमटेशम पणमामिनिचम। ये जिन्होंने लिखा, जिन्होंने गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, जिन्होंने त्रिलोक सार, जिन्होंने लब्धि सार, जिन्होंने क्षपणा सार ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने कम्म पयड़ी ग्रंथ की रचना की, वो नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। फिर अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं। तो वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने मूलाचार ग्रंथ की टीका लिखी, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने प्राकृत भाषा में वसुनंदी श्रावकाचार लिखा, तो उसमें यह गाथा है कि हुंडाव सर्पणी काल में अतदाकार स्थापना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मत मतांतर उत्पन्न हो गए हैं काल के प्रभाव से, तो इसलिए वो अतदाकार स्थापना को देखकर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, गाथा में ये लिखा हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि ठोने में जब अपन चावल या पुष्पों में भगवान की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें तो कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं हो रही ना, उसमें कोई भ्रम हो रहा है? अपन जान रहे हैं कि अपन ने भगवान को यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो फिर इन द्रव्यों में कुछ काल के लिए अपन ने भगवान को बुलाया, परमानेंट नहीं बुलाया। तो वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने आचार सार ग्रंथ के स्थापना सत्य प्रकरण में और स्थापना निक्षेप प्रकरण में दो स्थानों पर स्पष्ट लिखा है अक्षत आदिषु अयम चंद्र प्रभ जिनेन्द्र इति स्थापना स्थापना सत्यम इति स्थापना स्थापना निक्षेप। ये बात उन्होंने लिखी है, इसका अर्थ यह हुआ कि चावल आदि में अक्षत आदि में ये चंद्रप्रभ भगवान है, इस प्रकार की भावना करना, इस प्रकार की कुछ काल के लिए स्थापना करना, ये स्थापना सत्य भी है स्थापना निक्षेप भी है। शतरंज के बोर्ड पर आपने देखा है दोनों प्रकार की स्थापना होती है, तदाकार अतदाकार होती है। वहां पर हाथी ऊंट घोड़ा वजीर बादशाह और प्यादे, तो उनमें जो जो उस आकृति वाले हैं वो तदाकार हैं और जो जो उस आकृति वाले नहीं हैं वो अतदाकार हैं। तो इसी तरह जो वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि हुंडा और सरपड़ी में अतदाकार स्थापना नहीं करना, ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो अपेक्षा समझना आवश्यक है। क्योंकि वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि अक्षत में स्थापना करना, तो इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती और वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, ये दोनों सिद्धांत चक्रवर्ती में 36 का आंकड़ा था, यानी एक कांग्रेस और एक भाजपा वाले थे, ऐसा उल्टा अर्थ मत लगाना। दोनों दोनों को मानते थे, लेकिन बस अपने को विवेक से समझना होगा, अपने को उस अपेक्षा को समझना होगा कि कैसे वो मना कर रहे हैं और फिर ये करने को कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो बात है, सरल सी बात है। थोड़े समय के लिए अगर आपको स्थापना करना है तो फिर आप अतदाकार स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार विधि में ठोने पर आह्वान स्थापन और सन्निधिकरण अनिवार्य है, ठीक है, और अंत में फिर विसर्जन भी करना होता है। अगर आपने स्थापना की है तो फिर विसर्जन भी करना होगा आपको, नहीं तो आप स्थापना करके दूसरे किसी परिचित से बोल दो कि तुम कर देना विसर्जन, मेरे को जल्दी जाना है, फोन आ रहा है। अरे फोन लेकर क्यों आए हैं यहाँ पर, यहाँ आराधना करने आए फिर कॉन्टेक्ट करने आए दुनियादारी से, तो ये टेम्पररी है। वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती परमानेंट अतदाकार स्थापना का निषेध कर रहे हैं और वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती टेम्पररी अतदाकार स्थापना का विधान कर रहे हैं। तो दोनों में विवाद कहाँ हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। विवक्षा समझ जाओ तो विवाद समाप्त, और विवक्षा न समझो, खींचातानी करो तो फिर झगड़ा ही झगड़ा है। हठवाद में विवाद है, स्यादवाद निर्विवाद है। तो ये अष्टमंगल की चर्चा चल रही थी तो उसमें ये ठोना भी आता है। हो सकता है ठोना उन्हीं लोगों ने हटाया हो जिनको ठोना अमान्य हो। पर ऐसा नहीं है, ये विधि समझनी होगी। पहले पुरस्कार करते हैं फिर सत्कार करते हैं। आप तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में देखोगे तो सत्कार पुरस्कार शब्द मिलेगा आपको, ध्यान है आपको 22 परिश्रमों वाला सूत्र, शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नारत स्त्रीचर्या निषिद्ध शया क्रूशवध याचना लाभ रूप तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि, सत्कार पुरस्कार लिखा है। पर जब आप विधि करोगे तो पहले पुरस्कार करोगे बाद में सत्कार, तो लिखा वैसा क्यों है, जो क्रिया है उससे विपरीत क्रम में सूत्र क्यों बना है? तो उसका सरल सा उत्तर है कि सूत्र में एक नियम होता है कि जिस अक्षर जिस शब्द में अक्षर कम होते हैं उसको पहले लिखना पड़ता है, और जिस शब्द में अक्षर अधिक होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। तो पुरस्कार में 4 अक्षर, सत्कार में 3 है, तो सत्कार पहले लिख दिया, पुरस्कार बाद में। और जब आप विधि करोगे तो क्या होगा, पहले पुरस्कार करोगे फिर सत्कार करोगे, पहले आह्वान स्थापन सन्निधिकरण करोगे और उसके बाद में जलादि द्रव्यों से, आप अश्व द्रव्यों से पूजा करोगे उस पूजा को। और पूजा में जयमाला और मिला लो। जयमाला क्या वस्तु है, भगवान ने जिन जिन पर विजय प्राप्त की है उसका बखान करना जयमाला है। अर्थात जयमाला भगवान का गुणानुवाद है। तो पूजा और जयमाला को मिलाकर सत्कार कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, सत्कारः पूजा प्रशंसात्मकः। सत्कार की परिभाषा उन्होंने बताई कि सत्कार का अर्थ होता है पूजा करना और फिर पूजा के बाद प्रशंसा करना, स्तुति करना। तो देखो 3 विधियां हुई, पहले आपने आह्वान स्थापन सन्निधिकरण किया, पुरस्कार विधि हुई, फिर उसके बाद आपने सत्कार किया तो उसमें पूजा और जयमाला पड़ी। इसके बाद और भी कुछ क्रियाएं हैं, आपको जप भी करना होगा, जयमाला के बाद आपको जप भी करना होगा, फिर स्वाध्याय और ध्यान भी करना होता है। तो ऐसे ये पूरी प्रातःकालीन आराधना विधि संपन्न होती है। तो ये 5वां जो मंगल है वो है सुप्रतीक, जिसका अर्थ है ठोना अथवा स्थापना अथवा क्षेपिणी। फिर 6ठा जो मंगल है वो है भृंगार, भृंगार का अर्थ जारी है। जारी उस कलश को कहते हैं जिसमें ऐसे टोटी निकली रहती है किटली के समान, उसको झारी कहते हैं। और जो कलश ऐसे जिसमें से ऊपर से धार होती है वो कलश है, जिसमें टोटी से धार निकलती है वो भृंगार अर्थात झारी है। ये भी एक मंगल है। इसके बाद कितने हो गए, ये छत्र, ध्वज, कलश, चामर, सुप्रतीक, भृंगार, ताल। अच्छा, इसके पहले उन्होंने प्रारंभ में दर्पण शब्द और दिया है, तो दर्पण को आदि लेकर के ये 7 और जोड़ लेना। तो छत्र दूसरे नंबर पर है, पहला मंगल द्रव्य दर्पण है। कहते हैं कि शयन कक्ष में दर्पण नहीं रखना, भोजन कक्ष में हमेशा दर्पण रखना, ऐसा नियम है। दर्पण रखोगे तो पता चल जाएगा कि भोजन में कोई शरारत तो नहीं कर रहा। राजाओं के यहाँ दर्पण होते थे ना भोजन कक्ष में, तो कोई कुछ मिलावट करे या तो उसको बाहर से मिलावट करके आना पड़ेगा, अंदर अगर मिलावट करना चाहेगा तो दर्पण में पकड़ा जाएगा। और वैसे भी दर्पण भोजन कक्ष में बताया गया और शयन कक्ष में उसका निषेध। शयन कक्ष में दर्पण और जल और पौधे, इन 3 का निषेध है कि जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर पौधे नहीं होना, वहाँ पर पानी नहीं होना और वहाँ पर दर्पण नहीं होना। अगर दर्पण है तो उसको ढक दो, प्राय बेडरूम में वो अलमारी वाला दर्पण तो रहता ही है, तो उसको ढक दो। और जो अपने वस्त्र होते हैं, वस्त्र और पैरों में पहनने की कोई भी चीज़, मोजे, जूते, चप्पल, ये कभी आगंतुकों की दृष्टि में ना आए, अन्यथा वास्तु दोष होता है। अपने कपड़े जो आप पहने हो वो देख सकता है कोई, लेकिन जो आपके दूसरे कपड़े हैं जो पहने नहीं हैं आप, उस पर किसी की नजर न पड़े, ऐसा बताते हैं। अब आपने सूखने डाले वहां पर कोई देखे वो बात अलग है, घर की बात है। तो अंतिम जो मंगल है वो ताल है। ताल का अर्थ होता है व्यजन, व्यजन का अर्थ होता है हाथ पंखा। यहाँ पर चौके में है ना, ऐसे घुमाते भी हैं और फिर ऐसे ऐसे भी करते हैं, हाथ पंखा। वो भी एक अष्ट मंगलों में एक मंगल है। तो इस तरह ये देवकृत 14 अतिशयों का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। कुल मिलाकर 34 अतिशयों का वर्णन यहाँ पर आज संपन्न हुआ। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।